कहानी के नए प्रतिमान। जब जब रचनाकार आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण तथा आत्मसाक्षात्कार करता है, मुझे लगता है तब तब उसके भीतर आलोचना की कोपने फूटती है। 11 वर्ष का समय का कहानीकार ही चिंतामणि की रचना कर सका तथा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक ने कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई। फिर चाहे तार सप्तक से यात्रा प्रारंभ करने वाला आलोचक रामविलास शर्मा हो या नई कविता का कवि नामवर सिंह, सभी मूलतः रचनाकार रहे हैं। अतः यहाँ प्रस्तुत मेरी चिंताएं भी एक रचनाकार की मीमांसा है। हमारे आसपास जो सच है उसे शब्दों में रूपांतरित करने का नाम कविता है, लेकिन अपने आसपास के झूठ को सच में बदलने की बेमिसाल तरकीब का नाम कहानी है। दूसरे शब्दों में इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि मिथ्या को तथ्य बनाकर उपस्थित करने का कलात्मक उपकरण कथा है। निश्चित रूप से इससे कहानी की विराट सामाजिक शक्ति का पता चलता है, और इस दृष्टि से देखें तो कहानी साहित्य की दूसरे दर्जे की विधा हरगिज नहीं रह जाती। मैं अपनी बात एक कहानी सुनाकर आगे बढ़ाना चाहूँगा, एक ऐसी कहानी जिसमें समकालीन कहानी के तमाम बीज मौजूद हैं। आप चाहें तो उसे आधुनिकता बोध की पहली कहानी कह सकते हैं, जिसमें वे सभी बातें पूरी शिद्दत, ऊर्जा, जीवंतता, मौलिकता तथा इंटेंसिटी के साथ मौजूद हैं जो आज की कहानी में देखने को मिलती हैं। पता नहीं उस कहानी का रचयिता कौन रहा होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि वह कहानी इसी देश के किसी दादा या नानी ने रची है। इसी के आधार पर मैं एक बात और भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो विद्वान आधुनिक हिंदी कहानी को पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम मानते हुए उसे एडगर एलन पो, मोपासां, ओ हेनरी से जोड़ते हैं, उनको निश्चित रूप से भारतीय दादी या नानी की कहानी सुनने के बाद अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक चिड़िया कहीं से चने का दाना लेकर आई और उसे खाने के लिए एक खूंटे पर बैठ गई। जिस खूंटे पर चिड़िया बैठी थी उस खूंटे में एक दरार थी। चिड़िया से थोड़ी असावधानी हो गई, वह उसकी चोंच से दाना छूटकर खूंटों की दरार में फंस गया। चिड़िया ने खूंटे से निवेदन करते हुए कहा कि खूंटा महाराज, उसका दाना उसे वापस कर दो। खूंटे ने साफ शब्दों में चिड़िया से कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दाना तुम्हें वापस नहीं करूँगा। चिड़िया उड़कर बढ़ई के पास गई और कहने लगी, मेरा दाना एक खूंटे की दरार में फंस गया है, आप मेरी मदद करो और खूंटे को निकाल कर मेरा दाना मुझे दिला दो। बढ़ई ने चिड़िया को अपना सहयोग देने से इनकार कर दिया। चिड़िया साहब के पास गई और कहने लगी कि वह उसकी मदद करे और बढ़ई को अपने काटने का भय दिखाए। सांप ने चिड़िया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। चिड़िया ने हार नहीं मानी, वह उड़ते उड़ते एक लाठी के पास गई और उससे कहने लगी कि वह उसके साथ चले और सांप को मार दे। लाठी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। चिड़िया फिर भी निराश नहीं हुई, उसने आग, समुद्र और सूरज से निवेदन किया। अंततः सूरज सागर सोखने के लिए तैयार हो गया। सागर आग बुझाने को, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप बढ़ई को काटने को, और बढ़ई के भय से खूंटे ने चिड़िया का दाना अपने आप निकाल कर उसे दे दिया। ऊपर से देखने पर यह कथा जितनी सरल लगती है वास्तव में उतनी है नहीं। यह कथा अपने रचना कौशल में बेशुमार मीनिंग्स छिपाए हुए हैं। यहाँ विभिन्न अर्थ छायाएँ मौजूद हैं। जीवन संघर्ष और जिज्ञासा का द्वंद्व जितनी सरलता, सजगता और प्रभावपूर्ण ढंग से यहाँ उभर कर सामने आया है, वह इधर की बहुत सी कहानियों में नहीं दिखाई देता। यह कथा अपने अर्ध संप्रेषण में पूरी तरह आधुनिक है। यहाँ न तो उपदेशात्मकता है न कृत्रिमता। चिड़िया की भूख, चिड़िया का श्रम, चिड़िया की लड़ाई, चिड़िया का हार न मानना, इस दुनिया में गैर बराबरी तथा अस्तित्व पर खतरा आदि अनेक बातें हैं जो श्रोता को बेचैन करती हैं, उद्वेलित करती हैं, उसकी चेतना को झकझोरती हैं तथा उसके सामने जीवन और समाज की व्याख्या करने के लिए बेशुमार सवाल खड़ा करती हैं। आरंभ में लोग एक दूसरे के सामने बैठकर कहानियां सुनते थे, आगे चलकर कहानियां पढ़ी जाने लगी। आज लोग न तो कहानियां सुनना पसंद करते हैं न देखना, अभी तो वे कहानियां देखना पसंद करते हैं। बहरहाल इतना निश्चित है कि भारत में कहानी की परंपरा पाश्चात्य प्रभाव से हरगिज विकसित नहीं हुई, क्योंकि लोक और शास्त्र दोनों में कहानी की एक समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के दो भेद किए गए हैं, गद्य और पद्य। गद्य में पद्य की भांति पद संतान तो होता है, परंतु वह पादबंध नहीं होता। इस गद्य बद्ध काव्य के दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका। भामा ने दोनों के जिन सामान्य भेदक तत्वों का उल्लेख किया है, दंडी ने उनका खंडन किया है और दोनों को एक ही जाति का माना है। परंतु वाग्भट, विद्याधर, विश्वनाथ महापात्र आदि विद्वानों ने दंडी की बात नहीं मानी और इन दोनों भेदों को स्वीकृति दी। दोनों में महत्वपूर्ण भेद यह था कि आख्यायिका की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती थी, जबकि कथा की काल्पनिक। बाण का हर चरित्र आख्यायिका है और कादंबरी कथा। सुबंधु की वासव दत्ता और दंडी का दश कुमार चरित कथा है, पर अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय आख्यायिका। पर ये सभी गद्यबद्ध काव्य हैं। संक्षेप में कहें तो भारतवर्ष में कथा साहित्य का विशाल भंडार रहा है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धार्मिक वांगमय में उपदेश परक कथाओं की परंपरा तो है ही, स्वतंत्र रूप से भी नीति कथा और लोक कथा की परंपरा चली आ रही है। नीति कथा के पात्र मानव, मानवेतर, पशु पक्षी रहे हैं। नीति कथाएं तो भारत की सीमा लांग कर बाहर तक फैल चुकी हैं। पंचतंत्र ऐसी ही नीति कथाओं पर आधारित है। इसी परंपरा में हितोपदेश भी आता है। इन कथाओं में दोनों पक्षों पर बल है। कुतूहल तर्यक घटना श्रृंखला की भी और वर्णनों द्वारा मार्मिकता लाने की भी। संभवतः इसी साहित्य से प्रेरणा ले पाकर हिंदी कथा साहित्य में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की रचना हुई हो। देवकीनंदन खत्री तथा गोपाल राम घामरी जैसे कथाकारों ने एक विशेष प्रकार की इनक्विस्टनेस के साथ अपनी कथाओं का जो तंत्र विन्यास निर्मित किया, शायद उसी के लिए हम आज भी उनको याद करते हैं। धनपत राय, प्रेमचंद हरगिज न बन पाते यदि उन्होंने इन कहानीकारों से पाठकों को बांधने के जादू के नुस्खे, रोचकता, जिज्ञासा उत्पन्न करने का कॉन्फिडेंस का मंत्र न सीखा होता। व्यक्ति की बात हो और व्यक्तित्व की न हो, कहानी की बात हो और कहानीपन की न हो, यह भला कैसे संभव है? कहानीपन के अंतर्गत ही आता है शिल्प का सवाल। यह सवाल तब भी था जब हिंदी कहानी में कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह और पाँव में भाजीव जैनेन्द्र कुमार पहनना नहीं सीखा था। तब भी जब उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, अनमोल रतन, प्रेमचंद और मोहब्बत का रंग शिव पूजन सहाय के सलमे सितारे उसकी चूनर में नहीं टक पाए थे। यह सवाल टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे और दुलाई वाली बंगबाला की हिंदी कहानी के साथ ही जन्मा और उसके साथ ही विकसित हुआ। सन 30 में ही उसे बर्बर भेड़िए, भुवनेश्वर के आतंक और सन 35 में शोषण के मायावादी छद्म, ठगनी क्यों नैना झमकावे कफन, प्रेमचंद को विचित्र चित्रित करने का भाषा संस्कार आ गया था। तब भी वही सवाल से जूझ रही थी और छठे दशक में फूलों का कुर्ता यशपाल उलटकर सामंती ढोंग की परंपराओं को नंगा कर दिया था। तब भी, आज भी जब वह शोषण के जटिल व्यूह के बीच अपनी भूमिका पहचान का फैसला ले रही है, तब भी कहानी जब तक जीवंत और विकासमान कला है, शिल्प की प्रासंगिकता बनी ही रहेगी। नए नए कुल्ले फूटते रहेंगे, नई नई आलोचक कल्पना के कैलेडोस्कोप खिलते रहेंगे। इसके विपरीत जिस दिन कहानी का निबंधवत निबंधन हुआ, उसकी सरस्वती मरुभूमि में बिला जाएंगी। कथाकार संजीवनी की तरह यह चिंता सही है कि जब जब कहानी में विधा का निबंधन निबंधवत होगा, वह मरुभूमि में बिला जाएगी। शायद यही वजह है कि पूस की रात और कफन जैसी कहानियों से आगे हमें अमरकांत, भीष्म शाहनी, मोहन राकेश और उषा प्रेमबदा की कहानियां तो याद आती हैं, किंतु राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, कृष्ण बलदेव वैद्य आदि कहानीकारों की कोई कहानी याद नहीं आती। आगे चलकर रेणु और शैलेश मटियानी के साथ हमें काशीनाथ सिंह और ज्ञान रंजन तो याद आते हैं, लेकिन जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, गिरिराज किशोर, रघुवीर शहार, मुक्तिबोध, रमेश उपाध्याय, गोविंद मिश्र, मधुकर सिंह, असगर वजाहत, सुभाष पंत, स्वदेश दीपक, दूधनाथ सिंह, पानू खोड़िया, मणि मधुकर, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, सूर्य बाला, दीप्ति खंडेलवाल, सुधा अरोड़ा, अचला शर्मा, बलराम, धीरेन्द्र अस्थाना आदि कहानीकारों की कोई कहानी याद नहीं आती। सदी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, अखिलेश, महेश कटारे, देवेंद्र और विजय दान देथा की कहानियाँ हमारे जीवन क्रम में ऐसा हस्तक्षेप करती हैं कि हम यह कहने के लिए बाध्य होते हैं कि अपने आसपास के सच झूठ को सच में बदलने की बेमिसाल तरकीब का नाम कहानी है। कहानी मिथ्या को तथ्य बनाकर उपस्थित करने का कलात्मक उपकरण है। कहानी समय, समाज, इतिहास तथा जीवन की पुनर्रचना है। प्रकाशित रूप में जब एक कहानी पाठक तक पहुंचती है, तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में विस्तार पाता है, जिसे हम कहानी कहते हैं। वह वास्तव में रचनाकार की तीसरी दुनिया है, जो मन की दुनिया और बाहरी दुनिया का संघर्ष बनती है। अनुभवों के डिक्टेशन तथा तथ्य बहुलता की वजह से कहानी का रचनात्मक तनाव समाप्त हो जाता है। कहानी की सफलता इसी में है कि कथाकार कहानीकार को मिथ्या तथ्य बनाकर प्रस्तुत करे, न कि तथ्यों और सूचनाओं के अनावश्यक विवरणों से कहानी के मर्म को ही दबा दे। कहानी में झूठ और सच का संश्लिष्ट गुंफन कहानी की संवेदना के साथ होना आवश्यक है। कहानी एक भाषिक संरचना है। समकालीन कहानियों में भाषा यथार्थ का अनुकरण नहीं करती, अपितु भाषा यथार्थ का सृजन करती है। अक्सर कहा जाता है कि कहानी में भाषा गढ़ी नहीं जाती। जब जब भाषा को गढ़ने की कोशिश की जाएगी, उसका हश्र पारिभाषिक शब्दावलियों जैसा होगा। वह तो गली कूचों, सड़कों, पगडंडियों, स्कूलों, दफ्तरों, चरवाहों, हलवाहों, मल्लाहों, बुनकरों, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, बाबुओं, छोटे बड़े दुकानदारों, मंत्रियों, सिपाहियों, हरकारों, वकीलों आदि के यहाँ से निकलती है। ऐसा किसी समय मैंने ही कहा था। आज मुझे लगता है मेरा यह सोचना सही नहीं था। सवाल उठता है कि क्या उन जगहों से निकली भाषा को कहानी में ज्यों का त्यों रख देना चाहिए? शायद हरगिज नहीं। इन जगहों से निकली भाषा रॉ फॉर्म में होगी, उसे कहानी की भाषा नहीं कहा जा सकता। कहानीकार रचनात्मक ऊर्जा के ट्रीटमेंट से उसे ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज बदल कर जब अपनी कहानी में प्रयोग करेगा, एन उसी वक्त एक झूठी घटना सच्ची जैसे लगने वाली कहानी में बदलने लगेगी। वास्तव में कहानीकार के अनुभव में शब्दों को ग्रहण करने की और शब्दों में अनुभव को ग्रास्प करने की एक जबरदस्त भूख होनी चाहिए। यदि किसी कहानीकार के पास अनुभव है, दृष्टि है तथा रचनात्मक भाषा है, तो भी वह एक बेहतरीन कहानीकार नहीं बन सकता जब तक उसके पास इन तीनों को डिजॉल्व करने का एक खूबसूरत कैनवास पर समेटने का सामर्थ्य न हो। इधर लिख रहे कहानीकारों में मुझे यह सामर्थ्य स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, पंकज बिष्ट, अखिलेश, महेश कटारे, देवेंद्र और विजय दान देथा में ही दिखाई देता है। वैसे इन कहानीकारों की कथाभूमि ठीक वह नहीं है जो इसके पूर्व ज्ञान, काशी, महेंद्र, रविंद्र आदि की थी। समकालीन कहानीकारों ने मनुष्य के बदलते हुए जीवन को एक नए कैनवास पर ऐतिहासिकता के बोध की गहराई से पहचानते हुए चित्रित करने का प्रयास किया है। फिर चाहे वह वारन हेस्टिंग का शाण उदय प्रकाश हो या शहर कोतवाल की कविता देवेंद्र हो, चाहे ऊसर अखिलेश हो या अपराध संजीव, या फिर हमसे ऐसा सवाल पूछने वाली कहानी हो कि क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है स्वयं प्रकाश, अथवा कहानी में एक नई उम्मीद जगाने वाली कहानी आशा मर्धन विजय दान देता हूँ। मेरा यह मानना है कि ये कहानियाँ कथा मानदंडों को निरस्त करती हुई आलोचना को पराजित करती है। यहाँ मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि उदय प्रकाश तथा विजय दान देता की कहानियाँ आज के तमाम कहानीकारों के लिए चुनौती है। यदि आज कोई रचनाकार खुद को कहानी विधा में शामिल करना चाहता है, तो उसे उदय प्रकाश तथा विजय दान देथा के कहानीकार को क्रॉस करना होगा। कहानीकार के पास संवेदना की गहराई, व्यापक दृष्टि संपन्नता तथा सामाजिक दायित्वबोध होना आवश्यक है। मेरे विचार से सजग सामाजिक अध्ययन और सतर्क अंतर्दृष्टि से ही कहानी अधिक प्रासंगिकता प्राप्त करती है। कहानी मेरी दृष्टि में एक परियोजना है। समय, समाज, समसामयिकता, स्थितियों, समस्याओं, संवेदनाओं तथा सामाजिक दायित्वबोध सुपरी परियोजना। ऐसी परियोजना पर काम करते समय कहानीकार आस्थाओं, अनुभवों, अनुभूतियों, अध्ययन तथा ऑब्जर्वेशंस के रचनात्मक तनाव के आधार पर इतिहास तथा परंपरा की पुनर्रचना करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पुनर्रचना सबसे पहले कहानी होनी चाहिए। समकालीन कहानीकार कहानी में आदि से अंत तक तथ्य पर लगातार दबाव बनाता जाता है, परिणामस्वरूप कथा गायब हो जाती है। मेरी दृष्टि में यह उसकी सबसे बड़ी सीमा है। जिस कहानी में सरप्राइज, सरगर्मी, सन्नाई, औत्सुक्य, अपनापन और कहानीपन नहीं, उसे भला पाठक क्यों पढ़ेगा। एक बेहतर कहानी मनुष्य के भीतर की रिक्तता को भरती है। यहाँ एक दूसरी बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस कहानीकार के पास दास्तानों, किस्सों की भाषा नहीं होगी, वह गल्प का शिल्प निर्मित नहीं कर सकेगा और फिर कहानी जैसी विधा में विचारों को कथा के नैरंतर्य तथा रचनात्मक तनाव को बचाते हुए डिजॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं। महान कथाकार टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि रचनाकार के द्वारा भाषा का लापरवाही से इस्तेमाल करने का मतलब है विचार में लापरवाही करना। यशपाल से लेकर इधर के दर्जनों कहानीकारों ने यही किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि बिना विजन अथवा दृष्टि की कहानी नहीं लिखी जा सकती, किंतु दृष्टि के स्तर पर एक बेहतरीन कहानी की परख कैसे की जा सकती है, इसके संबंध में मुक्तिबोध ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहानीकार को सामाजिक यथार्थ के मात्र उसी पक्ष या अंश को उठाना चाहिए जो उसे सृजन की बेचैनी पैदा करने की हद तक संवेदित करते हैं। समूचे सूरज अर्थात यथार्थ को आत्मा में उतारने के बजाय यदि उसकी कोई छिटकी हुई किरण अपनी से लगती है, तो समझ लीजिए उसी किरण में रचना के बीज मौजूद है। जिस अनुभूति, अनुभव और अवसाद ने कहानीकार को आपसिस तथा आक्रांत किया हो, मात्र उसी को उसे कहानी में रूपांतरित करना चाहिए। कहानीकार की अनुभूति की ऑथेंटिसिटी तथा उस अनुभूति में उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही कोई कहानीकार शायद याद किया जाएगा। ऐसे कहानीकारों की कहानियां ही पाठक के दिल और दिमाग में एक साथ पैठ बनाती हैं। कहानी का अच्छी या बुरी होना, सफल या असफल होना, संवेदना के स्तर पर नितांत आंतरिक होना आज कोई मायने नहीं रखता। किसी समय घटनाएं जीवन के फोटोग्राफिक चित्रों का खंडन या संवेदना के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों का चित्रण या निजी अनुभूतियों का बारीक विश्लेषण एक बढ़िया काम था, लेकिन आज की बदलती हुई स्थितियों में हम देखना चाहते हैं कि कोई कहानी हमारे जीवन क्रम में कोई हस्तक्षेप भी करती है या नहीं। आज का समय संचार, प्रचार, आविष्कार तथा व्यापार का समय है। मनुष्यता पर होने वाले प्रहार का समय, जहां दुनिया के बड़े देशों का अहंकार दिन ब दिन खूंखार होता जा रहा है। इस समय में दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, तिरस्कार और रिश्तेदार जैसे शब्द अपना परंपरागत अर्थ खो चुके हैं। यह समय प्यार का समय नहीं, बाजार का समय है। यह समय गांधीवाद, मार्क्सवाद का नहीं, आतंकवाद, नव साम्राज्यवाद, उपयोगितावाद तथा उपभोक्तावाद का है। यह समय राजेंद्र यादव का नहीं, पप्पू यादव का है। यह समय इंदुमती का नहीं, जेंद्र सरस्वती का है। यह समय बुधिया के कफन का नहीं, कारगिल की कोफीन का है। आज हमारे ऊपर जो तारापत है, उसमें टिमटिमाते तारे, वो तारे नहीं जो हमारी दादी नानी या चंदा मामा की कहानियों में चमकते थे। उस तारापथ में सूचनाएं हैं, बेशुमार सूचनाएं, और उनके बीच है एक विध्वंसक ताड़िता जो किसी क्षण भी इस खूबसूरत व सुंदरा को भस्म कर सकती है। यह ऐसा समय है जब बच्चों की शरारतें मर चुकी हैं, उनके सपने गुलीवर ने नहीं ही मैन ने छीन लिए हैं। बहुत बार सोचता हूँ कि हमारे शिशुओं के शैशव के शरारतों का मरना क्या भविष्य के मनुष्य का मरना नहीं है। एक समय था जब बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बनते थे, विकसित होते थे, लेकिन आज बाजार की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य को ढाला जा रहा है। फिर इस बाजारवाद की फाउंड्री में क्या वास्तव में मनुष्य बच पाएगा? ऐसे समय में एक कहानीकार के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, वह स्वयं अनुमान लगा सकता है। इस समय को प्रत्येक जागरूक कहानीकार इसे जानते, पहचानते और समझते हुए अपनी कहानियों में चित्रित कर रहे हैं। कथाकार अखिलेश ने इस तरह की सही तस्वीर जिन शब्दों के द्वारा प्रस्तुत की है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश कहते हैं, एक लेखक के लिए यह समय असह्य है। और यह भी हकीकत है कि इस समय के लिए लेखक भी असहाय है। इस समय के अनुयायी चकित होते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो अलग डफली बजाते हैं। संवेदना, सरोकार, विचार, ज्ञान, रचनात्मक रूपांतरण, क्या क्या बकते हैं ये लोग। दूसरी तरफ एक लेखक के लिए यह समय कैसे सहाय हो सकता है जिसमें समाज की आत्यंतिक सुंदरता तबाह हो रही है। ऐसे हथियारों के बारे में विदित है कि उनका हमला मनुष्यों को खत्म कर देगा, लेकिन संपत्तियां बची रहेंगी। क्या इस बाजार में कई लाख ऐसे हथियारों को कत्लेआम के काम में नहीं लगाया रहा है? मनुष्य खत्म हो रहे हैं और वस्तुएं खिली हुई हैं। कई लाख हथियार मनुष्यता को बड़ी कलात्मकता से खत्म कर रहे हैं। ये मनुष्यों को वस्तुओं में तब्दील कर रहे हैं। मनुष्य की आत्मा को, उसकी इच्छाओं को, खुशियों और आशाओं को, उसके साहस और शौर्य को, सभी को वस्तु में बदल दे रहे हैं। इसी कार्रवाई में आत्यंतिक सुंदरताएं नष्ट हो रही हैं। उनके विनाश की झड़ी लग गई है। आत्यंतिक सुंदरताएं चेतना और हृदय में बसती हैं और आँखों, होठों और माथों पर दिखाई देकर विचारों और भावनाओं में प्रकट होती हैं। लेकिन बाजार बताता है कि सुंदरता क्रीम पाउडर, साबुन, बॉडी लोशन, तेल, बालसफा में बसती है। यह उसी तरह से जैसे बाजार उपदेश देता है कि दुख स्त्री, दलित और गरीबी में नहीं है, मृत्यु और वियोग में नहीं है, वह आपके पास रेफ्रिजरेटर या लग्जरी कार या चॉकलेट न होने में है। बाजार की वशीकरण विद्या कमाल दिखाती है और लोग समझने लगते हैं कि ज्ञान चेतना में नहीं, इंटरनेट में ही बसता है। कर्म मनुष्य नहीं, कंप्यूटर ही करता है। लेखक के रूप में इसी झूठ और सौंदर्य हत्या के विरुद्ध संघर्ष मेरा मंतव्य है। कथादेश फरवरी 2000 पृष्ठ संख्या 12। अखिलेश की यह चिंता कि मनुष्य खत्म हो रहे हैं और वस्तुएं खिली हुई हैं किसी भी लेखक को बहुत कुछ सोचने, समझने और लिखने के लिए बाध्य करती है। इस खूंखार समय में किसी कहानीकार की कहानी यदि पाठक में आत्मविश्वास, सजगता, साहस तथा संघर्ष पैदा करने की एक हल्की सी स्पार्क उत्पन्न करती है तो यह उसकी एक उपलब्धि कही जाएगी।